ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी देश भर के 3000 युवा नेताओं के साथ संवाद भी करेंगे।
देश भर से 3000 युवा नेताओं का चयन विकसित भारत चैलेंज के माध्यम से किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान युवा नेता प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण पर अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रधानमंत्री युवा नेताओं के साथ दोपहर के भोजन में शामिल होंगे, जिस दौरान उन्हें अपने विचारों, अनुभवों और आकांक्षाओं को सीधे प्रधानमंत्री के साथ साझा करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी प्रतिभागियों द्वारा 10 विषयों पर लिखे गए सर्वश्रेष्ठ निबंधों का संकलन भी जारी करेंगे। इनमें प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, विनिर्माण और कृषि जैसे विषयों पर निबंध शामिल है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग युवा नेताओं को देश के भविष्य को लेकर अपने विचारों को साझा करने के लिए नीति निर्माताओं, राष्ट्रीय और वैश्विक हस्तियों के साथ सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वैश्विक परिदृश्य में भारत के युवाओं के बढ़ते महत्व पर बल दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ब्रिटेन की यात्रा के दौरान कल लंदन में एक कार्यक्रम में भारतीय छात्रों को संबोधित कर रहे थे। श्री बिरला ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा नेता हैं। उन्होंने देश के भविष्य को आकार देने में भारतीय छात्रों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए आज से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को उनके कौशल, ज्ञान और समग्र विकास को बढ़ाने के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश का महान आध्यात्मिक संदेश पश्चिमी जगत में प्रचारित किया और भारत के लोगों के बीच नया आत्मविश्वास पैदा किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण और मानवता की सेवा में योगदान के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने कामना व्यक्त की कि स्वामी विवेकानंद की विरासत जारी रहेगी और विश्व भर में असंख्य लोगों को प्रेरित करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पूर्व विधायक कपिल मिश्रा को करावल नगर से, हरीश खुराना को मोती नगर से और हाल ही में आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुई प्रियंका गौतम को कोंडली से टिकट दिया गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी मुंबई, ठाणे, पुणे और नागपुर के नगर निगम सहित स्थानीय निकाय चुनाव अकेले ही लड़ेगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी को अपनी ताकत का आकलन करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी शिखर सम्मेलन आज देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 17 देशों के 60 से अधिक प्रवासी उत्तराखंडियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। प्रयागराज में कल पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ महाकुंभ आरंभ होगा। इस भव्य आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में घने कोहरे से दृश्यता कम होने के कारण कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार दिल्ली आने वाली 25 रेलगाड़ियां 4 से 5 घंटे की देरी से पहुंच रही हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेकर पहुंचे। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ स्थानों पर रात और सुबह के समय कोहरा छाया रहा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गांगी पश्चिम बंगाल में घना कोहरा छाया रहा। विभाग ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज के साथ तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंग्लैंड के साथ आगामी 5 मैचों की 2020 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान होंगे। अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है। मोहम्मद शमी की 1 साल से अधिक समय के बाद टीम में वापसी हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच 22 जनवरी को कोलकाता में खेला जाएगा। उधर महिला क्रिकेट में भारत और आयरलैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुजरात के राजकोट में खेला जाएगा। ये मैच सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।